유미타가 호우산인데 사타호 이때 자극도 무슨타 무르타 और आत्मीयता प्राप्त करना है इसके बिना किसी भी साधक को सिद्धि नहीं मिल सकती कारण कि निश्चिंतता जो है ये सामर्थ्य की प्रतीक है और निर्भयता जो है ये प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग कराती है और आत्मीयता जो है वो प्रीत की प्रतीक है। जब तक जीवन में सामर्थ्य की अभिव्यक्ति न हो प्राप्त का सदुपयोग न हो और प्रियता से जागृति न हो तब तक साधन निर्माण कैसा है। साधन निर्माण का अर्थ क्या है? हम सब का जीवन सामर्थ्य से संपन्न हो भय से रहित हो और प्रियता से युक्त हो इसी का नाम है साधन निर्माण। अब ये साधन निर्माण कैसे होता है इसके लिए मानव शासन की नीति ने जो बताया है कि जब हमारे आपके जीवन पर अपने जाने हुए का प्रभाव हो जाता है अर्थात जो हम जानते हैं उसका प्रभाव जब हमारे आपके जीवन पर हो जाता है तब क्या होता है कि जाने हुए का प्रभाव होते ही मिले हुए का सदुपयोग होने लगता है। जीवन का जो प्रथम मौलिक प्रश्न है वो यही तो है जो हमें आपको प्राप्त हो चाहे योग्यता के रूप में चाहे वस्तु के रूप में और चाहे सामर्थ्य के रूप में जो प्राप्त हो उसका दुरुपयोग न हो क्योंकि उसके दुरुपयोग होने से दूसरों का अहित होने लगता है। और एक बड़ा भारी एक वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे द्वारा दूसरों के प्रति जो कुछ होता है वही कई गुना अधिक होकर अपने प्रति हो जाता है। और आज हम इस विज्ञान पर विश्वास रखते और ये सोचते रहते हैं कि हम अपने मन में चाहे जिसको बुरा समझें चाहे जिसका बुरा चाहें भला हमारा ये दोष क्या प्रकट होगा क्या जिनका हम बुरा चाहते हैं वो इस बात को जान लेंगे तो अमुक व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है ऐसा लोग विश्वास कर लेते हैं। बात वास्तव में ऐसी नहीं है ये जाने अथवा न जाने अगर आप किसी को भी बुरा चाहते हैं तो आपकी वो चाह आप में और दूसरों में एक ऐसा भेद उत्पन्न कर देगी एक ऐसा भेद उत्पन्न कर देगी कि वो भेद एक परस्पर में संघर्ष का हेतु बन जाएगा। लोग समझते हैं ये जो हर वर्ष दस वर्ष के बाद एक युद्ध होता है लोग समझते हैं ये युद्ध जो होता है ये मानो अभी अभी शुरू हुआ। भाई सच मानिए अगर आपके जीवन में युद्ध नहीं है तो बाहर युद्ध हो ही नहीं सकता। जो चीज व्यक्ति के जीवन में होती है वही चीज समाज में व्यक्त होती है। इसलिए भाई अगर हमारे और आपके जीवन में से युद्ध समाप्त हो जाए तो चाहे अमेरिका कोशिश करे और चाहे रूस कोशिश करे चाहे हिंदुस्तान करे अथवा पाकिस्तान करे युद्ध नहीं हो सकता। किंतु जब तक हमारे और आपके जीवन में युद्ध हो तब तक आप चाहे कितनी व्याख्यान दीजिए युद्ध नहीं मिल सकता। तो जीवन में युद्ध क्या है, उसका मूल कारण क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। वो है दूसरे को बुरा चाहना। आप कहेंगे कि जब हम प्रत्यक्ष दूसरों के द्वारा अपने प्रति बुराई देखते हैं तो हम क्यों दूसरे को बुरा समझें? जरा सोचिए तो सही, जरा सोचिए तो सही, क्या कोई भी व्यक्ति उस समय तक हमारे साथ बुराई कर सकता है जिस पर आक्रमण कर सकती है जब तक हम स्वयं बुरे न हैं? अगर आप विज्ञान पर भरोसा करते हैं, अथवा यह कहो कि यदि आप विज्ञान को जानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सजातीयता में ही आक्रमण होता है, और जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म होता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये किसी मजहब संप्रदाय की बात नहीं है, ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि भाई जैसा कर्ता होगा वैसा कर्म होगा। और ये हमारे जीवन में बुराई नहीं है तो किसी की बुराई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। हमारे ऊपर दूसरों की बुराई तभी आक्रमण कर पाती है कि जब हमारे जीवन में भी बुराई होती है। केवल डिग्री का भेद होता है अथवा आगे पीछे का भेद होता है। जैसे लोग कहने लगते हैं कि साहब हमने तो बुराई तब की जो उन्होंने की। भाई जरा सोचे तो सही, अगर तुम्हारे जीवन में दूध रूप से बुराई नहीं थी तो किसी की बुराई करने पर आपके जीवन में बुराई की बुराई का प्रकट कैसे हुई? अंतर केवल इतना ही था ना कि किसी ने पहले उसको प्रकट कर दिया, किसी ने पीछे प्रकट कर दिया, किसी ने आज होता क्या जो अपने को मालिक मानता है, सेठ मानता है, साहूकार मानता है, जो नौकर को बाणी से बांटता है और वही नौकर और उसी सेठ को मन से कभी घर को गाली देता है। सेठ समझता है कि बेचारा दब गया, एक छोटा आदमी में बड़ा आदमी, लेकिन ये नहीं जानता है कि भाई आदमी होने के महत्व सब समय में है। सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास हृदय है, सबके पास प्राण है। आप पहुंचे हमने मुझसे बात लिया, ये समझता है कि भाई इनसे कुछ काम निकालना है, इसी बात से लो। लेकिन आप सच मानी हो वो कौन गुनी अधिक गालियां देता है अपने मन से। परिणाम क्या होता है कि उसकी दी हुई गालियां आपके और उसके बीच में भेद उत्पन्न कर देती हैं। आपकी दी हुई बात आपके और उसके बीच में भेद उत्पन्न कर देती है। उसका परिणाम ये होता है कि वो जहां रहता है वहीं ये समझता है ये कमरा मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है, वो चीज मेरी नहीं है, उसके बनने बिगड़ने की चिंता उसे जाके होने लगी। और फिर जब वो काम उससे गलत होता दिखाई देता है आपको, तब आप कहते हैं देखो ये ऐसा नालायक आदमी है, उसने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। और ये बात भूल जाते हैं कि हमने इसमें स्थापना बुराई की थी कि भलाई की, इस बात को भूल जाते हैं। आप कितना ही चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों न हो, कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि हम उसे कभी बुरा न समझो तो वो हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता। परंतु ये बात बड़ी कठिन मालूम होती है। कठिन इसलिए मालूम होती है कि हम इंद्रिय ज्ञान पर इतना भरोसा करने लगे हैं, इंद्रिय ज्ञान पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि ये सोचते हैं कि बस यही पूरा ज्ञान है जो हमें बुराई दिखाई देती है या सुनाई देती है, ये क्रियात्मक रूप में मालूम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं, इंद्रिय ज्ञान भाई मेरे अधूरा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। तो अधूरे ज्ञान के आधार पर जो हम निर्णय कर लेते हैं वो निर्णय न तो अपने लिए हितकर होता है न समाज के लिए हितकर होता है। इसलिए यदि आप और हम सचमुच ये चाहते हैं कि अब जीवन में संघर्ष न रहे, फिर शांति की स्थापना हो, परम प्रेम की अभिव्यक्ति हो, तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि हमें और आपको इस बात का व्रत लेना पड़ेगा कि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को बुरा समझने का, किसी को बुरा मानने का, किसी के साथ बुराई करने का। क्यों? जैसा हम दूसरों को समझेंगे वैसे दूसरे हमें समझेंगे। चाहे आज में बात मालूम हो कि हमारी चतुराई चालाकी दूसरों से छुपी हुई है, ना कि बताए लोग बड़ी बड़ी चतुराई करते हैं, अपने को हिंदू मानकर हिंदू और मुसलमान में भेद मानते हैं और ईमानदारी को भेद मानते हैं और फिर आशा क्या करते हैं कि मुसलमान हमसे लड़े नहीं। अरे भाई, तुम तो अपनी पाठशाला में भी मुसलमान का प्रवेश नहीं चाहते, जरा सोचो तो सही, ईमानदारी सोचो सही, तो क्या लोग होगा आपकी भावना मुसलमान समाज के मन में नहीं सोचोगे? तुम पाठशाला में प्रवेश नहीं चाहोगे बेटे, हम हिंदू हिंदू ग्रहण गए, पर इस बात को लोग ध्यान नहीं देते और ये समझते हैं कि हम जो उनको बुरा समझते हैं ये बात उनसे छुपी है, ये बात उनकी छुपी है, और ये जो बुराई करते हैं वो हमसे छुपी नहीं है, वो हमसे छुपी नहीं है। तीन ने आपको एक उदाहरण दिया, यही बात आप बाहर जाने दीजिए, अपने घरों में देखिए, आप घरों में देखिए कितने संबंधी ऐसे हैं जो अपने संबंधी को सचमुच बुरा नहीं मानते हैं, बुरा नहीं समझते हैं। हमने भी देखा भाई, हमें एक पंडित जी के अठहरे हुए थे, उनका छोटा सा लड़का था, उस लड़के से हमने कहा कि देखो पंडित जी कितने सज्जन आदमी है। अब लड़का हमसे कहता है, जरा से लड़का कहता है हमसे कि देखिए आप कहते हैं चाचा जी बड़े थे, चाचा जी बहुत कहते थे, सब कहते हैं आपसे, उसका परिणाम मालूम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ महाराज कि वही लड़का था जिसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि अगर हमको आपको सचमुच अपने सुधार करना है और सुंदर समाज का निर्माण करना है तो एक वृत्त मानव मात्र को लेना पड़ेगा कि भाई हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, भाई आप किसी को भला समझिए, अच्छा मत कीजिए। लेकिन क्या आज हमारे लिए आपके ऊपर ये भी दायित्व नहीं है हम दूसरे को बुरा नहीं समझे? ये दायित्व है। आप कहेंगे इससे लाभ क्या होगा? इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कि आपका नाम सुधारकों की सूची में प्रकाशित हो अथवा न हो, ये हो सकता है, हो भी जाए और न भी हो, लेकिन सुधार नहीं होगा ये अपना मेरा तो विश्वास भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। अच्छा, तो इसके बिल्कुल विपरीत अनुभव है कि सुधार तो होता है, परंतु आज दशा क्या है, जितनी लालसा हमको सुधारकों की सूची में नाम लिखाने का है, गुरुजनों की सूची में नाम लिखाने का है, उतनी वेदना सुधार के लिए नहीं है। यदि इतनी वेदना सुधार के लिए होती तो मैं आपसे पूछता हूँ, बुराई कहां से आती है, बुराई कौन करता है? आज हम ये तो कहते हैं कि कोई भी आदमी दो मकान का न रहे, कोई भी आदमी दो सामान का न रहे, लेकिन अपने लिए कितना सामान रखते हैं, अपने लिए कितने मकान बनाते हैं, उन बनाए हुए मकानों में से किसी को बांट देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं कि जनता से रुपया इकट्ठा हो और हमारी बुद्धि के द्वारा उसका विभाजन हो, यानी श्रेय तो हमको प्राप्त हो, वस्तु दूसरों की हो, और हमारे पास जो वस्तु है वो तो हमारी है ही, और जो हम सेवा करते हैं उसके बदले में दूसरों की वस्तु भी हमारी है। ये दशा होगी महाराज, सेवा के अंत में पद मिले तो हमको मिले, शासन करें तो हम करें, लेकिन चाहते क्या है, समाज सुधर जाए। भाई देखो, जरा सोचो, जो तुम चाहते हो वही मैं दूसरे चाहते हैं। अगर तुम सेवा के अंत में भोग चाहते हो तो मैं आपको पूछता हूँ, दूसरा बिना सेवा के भोग चाहता है, इतना भी अंतर होता है? देखिए, पुण्य आत्मा में और चाहता आत्मा में जो आप अंतर करेंगे इतना ही कर पाएंगे। आप कहेंगे हमने पहले पुण्य किया तब हम भोग चाहते, दूसरा कहेगा भैया हम बिना पुण्य के भोग चाहते हैं, इतना भी अंतर है। लेकिन दोनों के लक्ष्य में भेद है क्या? जब दोनों के लक्ष्य में भेद नहीं है तो आप किस आधार पर ये मान लेते हैं कि हम सुधारक हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनका हमें सुधार करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक सुधारक के मन में ये बात रहेगी कि हमें दूसरों का सुधार करना है, तब तक न वो अपना सुधार कर पाएगा न दूसरे का कर पाएगा। आप जानते हैं सुधार किनके द्वारा होता है? सुधार उन महापुरुषों के द्वारा होता है कि जो समस्त विश्व के देश को अपना देश जानते हैं, न बनते कल्पना नहीं जानते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख जानते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर हमारे जीवन में निर्देशता होती तो समाज में देश नहीं रहता है, समाज में देश नहीं रहता। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके द्वारा समाज का सुधार होता है। और मेरा तो यहाँ तक भी अनुभव भी है और विश्वास भी है कि ऐसे महापुरुषों को समाज जाने ये कोई आवश्यक नहीं है, जाने भी नहीं जाने। ऐसे महापुरुष भी होते हैं कि जिनको संसार नहीं जानता लेकिन संसार का प्रतिप्रसन्न कर रहे हैं। ये जो संसार के अंदर स्थान पाने की जो दृश्य आपको दिखाई देता है सब पूछिए, ये तो वासना पूर्ति का परिणाम है। प्रत्येक परिस्थिति वासना का परिणाम है। इसलिए आज जो आवश्यकता हो गई है वो ऐसे साधकों की हो गई है जो अपने साधन के द्वारा नेक सेवा करें। उनकी सेवा को बाहर की तो कौन कहे, उनकी इंद्रियों को भी पता न चले, उनके मन को भी पता न चले, उनकी बुद्धि को भी पता न चले, तब समझिए कि हम और आप सबकी सेवा कर सकते हैं। ये सेवा कैसे होगी? हमारे आपके अहम भाव में से, हमारे आपके अहम भाव में से ये बात सदा के लिए निकल जाए कि बुराई जैसी कोई वस्तु है, बुरा जैसा कोई व्यक्ति है। अगर ये बात आप निकाल सकते हैं तो निस्संदेह आपके जीवन से ये पूरा हो सकती है। आप कहेंगे ये तो कभी संभव ही नहीं है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि समस्त व्यक्ति में बुराई जैसी व्यक्ति नहीं है। तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ ये कभी संभव नहीं है कि आप सत्यवित हो जाए, ये कभी संभव नहीं है कि आपको योग की प्राप्ति हो जाए, ये कभी संभव नहीं है कि आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। क्यों भाई, जरा सोचे तो सही, जिसकी तुम सत्ता स्वीकार कर लोगे उससे संबंध विच्छेद कैसे कर सकते हो? तो देश की सत्ता स्वीकार करने पर देश से संबंध विच्छेद होगा ही नहीं, और जब देश से संबंध विच्छेद होगा ही नहीं तो निर्देश का आएगी नहीं। इसलिए भाई अगर हम और आप अपना अथवा दूसरों का भला चाहते हैं तो उसका सबसे प्रथम साधन हो हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे। जिस समय ये भावना आपकी परिपक्व होगी, जिस समय इस भाव में आपकी दृढ़ता होगी, उसी समय आपके जीवन में से अशुद्धि नाश हो जाएगी और उस अशुद्धि के नाश होते ही शुद्धता की अभिव्यक्ति होने लगेगी। और वो जो शुद्धता की अभिव्यक्ति होगी वो दिव्य होकर समस्त विश्व को शुद्ध बना देगी। आप कहेंगे कैसे? जरा विचार कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नियम है कि जो जिसको विषय करता है वो उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होता है। जैसे इंद्रियां जिस जगत को विषय करती हैं वे इंद्रियां जगत की अपेक्षा सूक्ष्म और दिव्य है। मन जिन इंद्रियों को विषय करता है वो मन इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म और दिव्य है। बुद्धि जिस मन को विषय करती है वो बुद्धि मन की अपेक्षा सूक्ष्म और दिव्य है। और जो बुद्धि का ज्ञाता है बोले वो बुद्धि से दिव्य है। अब आप सोचिए सुधार कहां से आरंभ हुआ? वो सुधार उससे आरंभ हुआ कि जो अपने को इंद्रियों से मन से बुद्धि से भी सूक्ष्म मानता है या जानता है कि भाई मेरा मन तो मैंने मन को विषय किया तो मैं जो हुआ तो मन की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हुआ, बुद्धि की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हुआ। तो जो बुद्धि की अपेक्षा भी अधिक सूक्ष्म और गुरु है और उस मैंने स्थापना कितना की हुई तो निर्दोषता की हुई, प्रेम की हुई, योग की हुई, ज्ञान की हुई। तो वो जो योग ज्ञान और प्रेम का जो प्रभाव है वो समस्त विश्व में कुछ फैलेगा। लेकिन मेरी बात में ये हो गई कि मेरा नाम दुर्गम में हो जाए, आचार्य में हो जाए, नेताओं में हो जाए, संसार के इतिहास में अंकित हो जाए। तो भाई ये जो वासना है, एक बात ध्यान दीजिए, वासना एक हो या अनेक हो, भली हो या बुरी हो, एक प्रत्येक वासना में अनंत वासना समझना चाहिए। जैसे प्रत्येक बीज में अनंत वृक्ष छिपे रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक संकल्प में अनंत संकल्प रहते हैं, प्रत्येक वासना में अनेक वासनाएं रहती हैं। तो भाई जब तक एक भी वासना है तब तक निर्विकारता की स्थापना नहीं हो सकती, और जब तक निर्विकारता की स्थापना नहीं हो सकती तो निर्विकार हुए बिना जरा सोचिए तो सही सुधार कैसा, सुधार का अर्थ क्या है, विकारों की निवृत्ति। तो विकारों की जो निवृत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, जो होती है जाने हुए के प्रभाव के द्वारा। तो जब हम और आप इस बात को जानते हैं कि कोई हमें बुरा न समझे, कोई हमारे साथ बुराई न करे, क्या सोचू कि कोई हमारा बुरा न चाहे, तो मैं आपसे पूछता हूँ हमें कहां से अधिकार हो गया हम किसी को बुरा समझेंगे, हम किसी की चीज के साथ बुराई करेंगे अथवा हम किसी के साथ किसी का बुरा चाहें। और मैं आप ध्यान तो दीजिए, अगर यही बात गुरू हो जाए, यही बात व्यापक हो जाए कि भाई इस बात का जीवन में कोई स्थान नहीं है कि कोई किसी का बुरा चाहे अथवा कोई किसी को बुरा समझे अथवा कोई किसी के साथ बुराई करे, तो मैं आपसे पूछता हूँ बुराई कहाँ से आएगी, बुराई कहाँ से आएगी, बुराई तो चाहने से आती है भाई मेरे। देखो एक बड़े रहस्य की बात, भलाई अपने आप और बुराई चाहने से, भलाई सुखा होती है और बुराई करने से, बुराई करने से होती है और भलाई सुखा होती है। तो जब हम किसी को बुरा समझेंगे ही नहीं, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, तो भला बताइए बुराई आएगी कहां से, नहीं आएगी। इतना ही नहीं कि ही बुराई का नाश अपने आप होता है, ही बुराई नाश हो जाएगी। और जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो बुराई का जन्म ही नहीं होगा, जब बुराई का जन्म नहीं होगा तो जो स्वतः होने वाली भलाई है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी। यह भी एक सुधार का उपाय है, और ये जो सुधार है वो ही लोग कर सकते हैं जिनको गुरु नेता शासक बनने की वासना नहीं है। जिसे गुरु बनने की लोक मात्र भी वासना है वो ये सुधार नहीं कर सकता, नेता बनने की वासना है वो नहीं कर सकता, शासक बनने की वासना है वो नहीं कर सकता। जरा सोचिए तो सही, गंभीरता से विचार तो कीजिए, अपने से किसी को छोटा समझना, अपने से किसी को छोटा समझना ये कैसा लगेगा आपको? अगर कोई आपको अपने से छोटा समझे तो आपको कैसा मालूम होगा? अगर आप में जरा भी उसका अभिमान है तो कहेंगे अजीब आदमी, हमको क्यों छोड़ना मतलब, जो कि आप कहेंगे छोटे बड़े तो प्रकृति के विधान में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छोटा और बड़ा प्रकृति के विधान में हो ही नहीं, ऊंचा और नीचा प्रकृति के विधान में हो ही नहीं, भला और बुरा प्रकृति के विधान में हो ही नहीं। ये द्वंद्वात्मक जो स्थिति है ये मंगलमय विधान में नहीं है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति तो अभिवेक से उत्पन्न हुई है। आप कहेंगे कैसे, कल्पना करो कि आप ये कहें कि साहब मैं बड़ा आदमी हूँ और बोले मेरा रसोईया जो है वो छोटा आदमी है, बात ठीक मान लेते हैं। लेकिन कल्पना तो करो कि दूसरी का आप कैसे न जाए, अगर रसोई ठीक न बनाए तो दूसरी कौन होगा? तुम हो गए तो रसोईया, खींचेगा कौन? तुमको रसोईया। अरे जिसके सहयोग के बिना तुम खींच गए, जिसके सहयोग के बिना तुम दुखी हो गए, उसको तुम अपने से छोटा मानते हो? कितनी भाई की बात, विचार तो करो, गंभीरता से विचार करो। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखें तो कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्यों? कौन ऐसी ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी मांग नहीं है? कौन ऐसी व्यक्ति है कि जिसकी मांग नहीं है? तो छोटा कौन है जो अपनी जगह पर ठीक काम नहीं करता? अगर रसोईया ठीक रसोईया है तो वो इतना ही बड़ा आदमी है जितना दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी है। लेकिन अगर बड़े से बड़ा आदमी जिसे आप समझते हैं, बड़े से बड़ा आदमी माने जिसको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया हो, जिसके पास बहुत सा सामान इकट्ठा हो गया हो, उसे उसको आप जिसको बड़ा समझते हैं, अगर वो अपनी जगह पर गलत है तो क्या वो बड़ा आदमी है? वो बड़ा आदमी नहीं है। सच पूछिए तो रसोईया के गलत होने से तो दो चार आदमी की तकलीफ होती है, और वो जो बड़ा आदमी है वो अगर गलत होता है तो लाखों आदमियों को चौपट कर देता है। जरा विचार कीजिए। तो भाई मेरी दुनिया में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जो अपने स्थान पर गलत है वही छोटा है, जो अपने स्थान पर ठीक है वही बड़ा है, और अपने स्थान पर गलत कौन होता है? जो अपने को समझदार और दूसरे को बेसमझ मानता है, जो अपने को बुद्धिमान और दूसरे को ये मानता है किसी बुद्धि है ही नहीं। और ये रोग किसको नहीं है? नेता तो कोई इस रोग से बच नहीं पाता भाई, और गुरु कोई इस रोग से बच नहीं पाता। गुरु बनकर कोई शोर से नहीं बच पाता, नेता बनकर कोई शोर से नहीं बच पाता, शासक बनकर कोई शोर से नहीं बच पाता। देखिए जरा विचार तो कीजिए, जिन गुरुजनों को घमंड हो, अभिमान हो कि हमने संसार का सुधार किया, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा गुरु दुनिया में आज तक ऐसा हुआ जिसने जिसके होने के बाद बुराई में रही है? आप बता सकते हैं कौन सा शासक ऐसा हुआ कि जिसी ने आज तक ये कह दिया हो कि हमारे राज्य में बुराई जैसी चीज नहीं है? बुराई का दब जाना, बुराई का कम हो जाना ये दूसरी चीज है, और बुराई का मिट जाना दूसरी चीज है। अगर हम लोग खूब गंभीरता से विचार करें तो आज की बस्ती स्थिति तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाई शासक प्रणाली भी असफल हुई और मजहब की प्रणाली भी असफल हुई। ये वो भयंकर समय है महाराज कि जिस समय ईमानदार आदमी को मानना पड़ता है कि मजहब के रहते हुए भी बुराई नहीं मिलती, शासन के रहते हुए भी बुराई नहीं मिलती, फिर भी हम गुरु बनने की सोचते, फिर भी हम शासक बनने की सोचते, फिर भी हम नेता बनने की सोचते। जरा ध्यान तो दीजिए, ये सुधार की बात है कि भोग का एक तरीका है, भोग के तरीके को सुधार नहीं देते, भोग के तरीके को सुधार नहीं देते। क्यों? जो कोई बुराई करता है सरकार, पूरा ध्यान दीजिए, ठंडी तरीके से सोचिए, बुराई का जन्म होता है भोग की रुचि में। भोग की रुचि जब तक रहती है बुराई जीवन से निकलती नहीं। चाहे हम कुछ बनाकर भोग करें, चाहे हम प्रजा मानकर भोग करें, चाहे हम नेता बनकर भोग करें। भोग का अर्थ क्या है? किसी दूसरे के द्वारा सुख सम्मान का संपादन, किसी दूसरे के द्वारा सुख सम्मान का जो संपादन है यही में भोग है। और उस भोग के रहते हुए हम स्वयं निर्देश नहीं हो सकते। आज यही दशा हो गई तो दोषी होते हुए निर्देशता की चर्चा करते हैं, भोगी होते हुए योग की चर्चा करते हैं, अविवेक होते हुए विवेक की चर्चा करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि भाई परमांश में तो कोई बुरा होता नहीं, आंशिक बुराई होती है जीवन में, वो आंशिक आंशिक बुराई का हम नाश नहीं कर पाते और आंशिक भलाई के आधार पर समाज में स्थान पाकर किसी को अपने से बड़ा, किसी को अपने से छोटा मानकर जीवन विशेषता डालते हैं। इस भयंकर परिस्थिति में इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन अपने को मानव मानू।